ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فباب الأمل الذي يبتغى به وجه الله یہ باب اس عمل کے بیان میں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی مطلوب ہو, یعنی جو عمل خالص اللہ تعالی کی ذات کے لیے کیا جائے, اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص سے ہو, تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیسی قدر و قیمت ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہر چیز میں, جیسے انسان ہے ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے, جسم میں آنکھیں کان زبان ناک ہاتھ پاؤں سارے اعضاء موجود ہیں, لیکن اگر اندر روح نہیں ہے تو یہ پورا جسم اور ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ روح جو ہے اسی کو انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے جسم پر لفظ انسان جو بولا جاتا ہے وہ دراصل مجاز حقیقتا نہیں, چنانچہ جب روح نکال لی جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اس جسم کو تھوڑی مدت کے لیے بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا جاتا, اس کو دفن کر دیتے. تو ہر چیز کے اندر ایک تو اس کا اعمال جو ہے انسان کے, ان اعمال کے اندر بھی ایک اعمال کی شکل و صورت ہے, اس کا ڈھانچہ ہے, اور ایک اعمال کی روح ہے. تو اعمال کی شکل و صورت جو ہے یہ روح, اس کا اخلاص. کوئی بھی عمل اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اس کی ذات کے لیے کیا جائے, یہ ہے اس عمل کی روح. اور اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ کتنی اونچی کیوں نہ ہو, اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں نیت کا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاغُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ, جو جانور ہدی کے اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے تھے حرم کے اندر, تو قربانی کے ان جانوروں کے متعلق قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, تمہارے دل کی جو کیفیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہیں. اس لیے دراصل اسی کی طرف آدمی کو توجہ کرنی چاہیے اور اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اعمال کی ظاہری شکلوں کا چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اس پر فریفتہ نہ ہوا ہے, لیکن وہ اعمال کام کا عمل کام کا اسی وقت سمجھا جائے گا جب اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو. اسی لیے اس باب کو اس چیز کو بتلانے کے لیے احادیث میں قرآن میں جگہ جگہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اخلاص اور اللہ کی خوشنودی مقصود اور مطلوب نہ ہونے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے مزید گرفت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے تین آدمیوں کو پیش کیا جائے گا, ایک ان میں شہید ہوگا, دوسرا جو ہے سخی ہوگا, تیسرا قاری ہوگا. شہید کو باری تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو قوت دی تھی, شجاعت اور بہادری دی تھی, تم نے ہماری اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ تو باری وہ جواب میں سے کہے گا باری تعالیٰ تمہارے دشمنوں کا اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ میں نے جان کی بازی لگا دی اور جو ہے شہید ہو گیا. باری تعالیٰ فرمائیں گے جواب میں یہ اس لیے تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے, سو کہا جا چکا, تم نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا تھا وہ دنیا میں مل چکا, فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو. دوسرا سخی ہوگا, مال دیا تھا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مال جیسی نعمت تم کو عطا فرمائی تھی, تم نے ہماری اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ نیکی کا کوئی شعبہ کوئی جو ہے کام ایسا نہیں تھا جس کے اندر خرچ کرنے کی تیری طرف سے ترغیب دی گئی ہو اور میں نے اس میں پیسہ خرچ نہ کیا ہو, مسجد میں, مدرسے میں, فلاں جگہ ہر جگہ. باری تعالیٰ کی طرف سے جواب میں یہی کہا جائے گا یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے, فرشتوں میں اس کو لے جاؤ جہنم. قاری سے کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم کو اپنی کتاب کا علم دیا تھا, بہت بڑی نعمت دی تھی, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہا میں نے پڑھایا اس کی اشاعت کی. باری تعالیٰ کی طرف سے جواب میں یہی کہا جائے گا یہ سب اس لیے کیا تھا لوگ کہیں بڑا عالم ہے بڑا قاری ہے, شہرت دکھلاوا مقصود تھا, میری خوشنودی مقصود نہیں تھی, فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کر کے اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. فیہ سعدن, پہلے تو اس میں ایک روایت کی طرف اشارہ کیا جو بخاری ہی میں دوسری جگہ موجود ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو اشرع مبشرہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جو ہے فتح مکہ والے سال بہت بیمار ہو گیا, مکہ مکرمہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر حضرات صحابہ کا گیا تھا اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. فرماتے ہیں کہ وہاں مکہ پہنچنے کے بعد میں اتنا بیمار ہوا کہ بس موت کے قریب ہو گیا, اب میرے بچنے کی امید نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے, میری تیمارداری کے لیے, خبر پرسی کے لیے تشریف لائے, تو چونکہ ان کو اب ان کے اپنے بچنے کی امید تھی نہیں, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرے وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے, گویا اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے, کیا میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا दो तिहाई, टू थर्ड का वो भी नहीं, का आधा का वो भी नहीं, का तिहाई, कहां तिहाई की वसीयत कर सकते हो, और वो भी बहुत ज्यादा है। तुम अपने वारिसों को माल वाला छोड़कर जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है इसके इससे कि तुम उनको गरीब छोड़ करके जाओ, लोगों के सामने वो सवाल के लिए हाथ फैलाते हूं। और फिर आखिर में एक जुमला फरमाया, उसकी तरफ इमाम बुखारी इशारा करना चाहते हैं, इन्नका लन तुन्फिका नफकतन तब तगी बिहा वजहल्लाह, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, चाहे वो दो पाई हो, एक पैसा हो, लेकिन उस खर्च करने से मकसूद अल्लाह ताला की जात हो, अल्लाह की खुशनुदी हो, अल्लाह को राजी करना मकसूद हो, तो इल्ला उजिरता अलैहा, अल्लाह ताला की तरफ से तुमको उस पर क्या मिलेगा, अजर और सवाब मिलेगा। हत्ता मा तजअलु फी मरातिका, यहां तक कि तुम कोई लुकमा उठाकर अपनी बीवी के मुंह में दो, और उसमें भी तुम्हारी नीयत क्या हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की, कि अल्लाह ताला ने घर वालों का जो हक रखा है, कभी बीमार होती है बीवी, जरूरत पेश आती है कि शौहर तो वो खुद खा नहीं पाती, शौहर खिलावे, और मकसद यही हो कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जो उसका हक रखा है, इस तरह मैं अदा कर रहा हूं अल्लाह को राजी करने के लिए। तो गोया अल्लाह को राजी करने के लिए ये लुकमा उठाकर उसके मुंह में रखोगे, उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से तुमको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। बजाहिर देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि इस पर क्या सवाब मिले, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चूंकि मकसद इसमें क्या है, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा, अल्लाह की जात पेश नजर है, इसलिए तुमको उसके ऊपर अजर और सवाब मिलेगा। चुनांचे अहादीस में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि एक जानिया औरत एक मर्तबा जा रही थी, और वहां एक कुएं के पास से उसका गुजर हुआ, कुआं के पास देखा एक कुत्ता जो है वो प्यास से तड़प रहा है, जबान बाहर निकाल रहा है, वहां कुएं के पास रस्सी और डोल नहीं था। उस औरत ने अपना दुपट्टा निकाला और अपना चमड़े का मोजा उस दुपट्टे के साथ बांध करके अंदर कुएं में से पानी लटका कर पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाया, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मगफिरत कर दी गई। अब देखिए ये जानिया औरत, अदर शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह को रंडी का अमल भी अगर पसंद आ जाए, अल्लाह के लिए किया हुआ है, तो अल्लाह उस पर भी मगफिरत फरमाएगा। अमल क्या था, खाली एक कुत्ते को पानी पिलाना, लेकिन चूंकि ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया था, उसने वहां कोई था भी नहीं कि कोई देखता, शाबाशी देता, कोई अवार्ड देता कि मरते हुए कुत्ते को बचाया गया है तो इसको कोई अवार्ड दिया जाए प्रजासत्ताक दिन के ऊपर, वहां कुछ भी नहीं था। बहरहाल ये खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए किया था, तो उस पर अल्लाह ताला ने ये किया। एक और रिवायत है, एक आदमी रास्ते से गुजरा, रास्ते से अहले ईमान वहां से आते जाते रहते थे, एक दरख्त की टहनी ऐसी लटकी हुई थी जो आने जाने वालों को तकलीफ पहुंचाती थी। इसने सोचा इस दरख्त की टहनी की वजह से आने जाने वालों को तकलीफ होती है, उसने उसको काट दिया ताकि गुजरने वाले उस तकलीफ से बच जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस इतनी बात पर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। यहां पर भी क्या हुई, अमल बहुत छोटा सा है, एक टहनी काट करके ये कर देना, कोई बड़ा अमल नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की जात को सामने रख करके वो अमल किया गया था, इसलिए अल्लाह के यहां उसकी इतनी कदर कीमत हुई। बुखारी ही के अंदर ये भी रिवायत बुखारी ही की है, जो भी सुनाई ये टहनी वाली भी, इसी तरह बुखारी ही के अंदर वाकया मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदमी एक मर्तबा जा रहे थे, अचानक बारिश बरसना शुरू हुआ, बारिश की तेजी की वजह से अपने आप को बचाने के लिए वो पहाड़ के अंदर एक गार था खो, उसमें चले गए कि जब बारिश थम जाएगी तो फिर बाहर निकलकर आगे अपना सफर जारी करेंगे। बस वो अभी अंदर ही थे, इसी हालत में पहाड़ के पत्थर की एक बड़ी चट्टान ऊपर से लुढ़क करके आई और वो गार का दहाना जिस अंदर दाखिल होने का जो रास्ता था उस पर आकर फिट हो गई, एकदम कुछ नजर नहीं आ। अब जाहिर है वहां और कोई था भी नहीं, और होता तो भी वो क्या तीर मारता, इतनी बड़ी चट्टान का हटाना किसी के बस का नहीं था। इसलिए इन लोगों को यकीन हो गया कि गोया अब हमारी मौत यकीन ही है। उसमें फिर आपस में उन्होंने एक ने हर एक दूसरे से कहा, भाई देखो इस वक्त तो अगर अल्लाह के अलावा कोई हमारी जान बचा नहीं सकता, अब हम अपने अमाल का जायजा लें जिंदगी का, हमने कोई ऐसा अमल जो खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए किया हो, अल्लाह की जात को सामने रख कर के किया हो, कोई और गरज मकसूद न हो, उसका वास्ता देकर अल्लाह से हम अगर दुआएं करें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल फरमाएंगे। क्या ठीक है, चनांचे पहले आदमी ने दुआ शुरू की कि अल्लाह मेरे पास कुछ जानवर थे दूध वाले जिनको मैंने पाल रखा था और रोजाना मैं उनको चराने के लिए ले जाता था, शाम को जब वापस आता था, वापस आने के बाद उसका जब दूध निकालता था तो वो दूध सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन जानवरों को चराने के लिए जरा दूर निकल गया, जब वहां से वापस आया तो रात शुरू हो चुकी थी और माँ बाप सो गए थे। मैंने आदत के मुताबिक दूध निकाला और बर्तन में लेकर के माँ बाप के पास आकर खड़ा हो गया। अब उनको जगाना भी ठीक नहीं लगता कि उनकी नींद खराब होगी, और मेरे बच्चे वहां मेरे पांव के पास जो हैं बिलक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं दूध पीने के लिए, लेकिन माँ बाप से पहले उनको पिलाना भी तबीयत को गवारा नहीं था। यही हाल पूरी रात रहा, यहां तक कि माँ बाप जब उठे तो उनको दूध पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। अल्लाह तू जानता है कि ये अमल खालिस तेरी जात को सामने रखते हुए और तेरी खुशनुदी के लिए मैंने किया है, अगर ऐसा है तो इतना खोल दे पत्थर जिससे हमें आसमान नजर आवे। चुनांचे पत्थर इतना हट गया, आसमान नजर आने लगा। दूसरे आदमी की बारी आई, उसने दुआ की, अल्लाह मेरी एक चचाजात बहन थी बड़ी हसीन और जमील और मैं उस पर आशिक था, और एक मर्द जैसे किसी औरत से टूट कर ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करता है, मुझे ऐसी मोहब्बत थी। एक मर्तबा मैंने अपनी ख्वाहिश का उसके सामने इजहार किया कि तू मुझे अपनी ख्वाहिश पूरा करने दे। उसने कहा 100 दिनार अगर तू दे तो मैं ख्वाहिश पूरा करने दूंगी। कहा मैंने बहुत मेहनत से 100 दिनार कमाए और कमा करके उसके हवाले किए, और शर्त के मुताबिक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब उसकी तरफ आगे बढ़ा तो उसने मुझे कहा है अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, और ये मोहर जो है अल्लाह के हुक्म के बगैर इसको मत खोल। मैं फौरन हट गया और वो 100 दिनार भी मैंने छोड़ दिए। अल्लाह ये काम मैंने अगर तुझसे डर कर तेरी खुशनुदी और तेरी जात के लिए किया है, तू जानता है, तो पत्थर को और कुछ खोल दे। चुनांचे यहां हर हर ये अल्लाह ये अमल तेरी खुशनुदी के लिए अंदर मौजूद है अल्फाज, तो फिर थोड़ा और खुल गया। तीसरे ने दुआ शुरू की कि अल्लाह एक मरतबा मैंने एक मजदूर काम के लिए मजदूरी पर रखा और जब काम पूरा कर चुका तो मजदूरी में ने उसके सामने पेश की, लेकिन किसी वजह से वो उस मजदूरी को लिए बगैर, मजदूरी तय की थी चावल कुछ एक आध सा दो सा जो भी है एक वसा चावल जो थे तो वो मैंने तय किए थे, लेकिन वो लिए बगैर चला गया। तो उसके जाने के बाद वो चावल जो उसकी मजदूरी के थे मैंने अपनी खेती में अपने बीज के साथ उसको भी बोया, और उन चावलों से जो पैदावार हुई उससे फिर इतनी आमदनी हुई थी जिससे मैंने गायें खरीदी और फिर उससे जो है चरवाहा भी खरीदा। और फिर एक मुद्दत के बाद वो आदमी आया और आकर मुझे कहने लगा अल्लाह के बंदे डर मेरी मजदूरी ला, का ये गायें और ये चरवाहा ले जा। का मजाक मत करने भाई। कहा नहीं मजाक नहीं करता, ये तेरी इससे नहीं है। कहा वो ले गया कि अल्लाह तो जानता है कि ये खालिश तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था, तो पत्थर खोल दे। चुनाते खुल गया और उन लोगों की जान बच गई। तो देखिए यहाँ जो अमाल हैं, अमाल जो बतलाए गए कि भाई पहला अमल जो था उसमें माँ बाप को दूध पिलाने का यह एहतमाम, वो कोई बहुत बड़ा अमल नहीं था। कोई मैदान जिहाद में कोई अपनी जान की कुर्बानी उसने नहीं दी थी। ये अमल देखने के अगर हम सोचें तो कोई बड़े अमल नहीं है, लेकिन चूंकि ये अमल वो थे कि जो अल्लाह को खुश करने के लिए। इससे मालूम हुआ कि हर मौके पर इंसान को इसका एहतमाम करना चाहिए कि अपने अमल को खालिस अल्लाह ताला के लिए अंजाम देने की कोशिश करे। हजरत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकात उनके खुतबात में है कि एक बहुत बड़े आलिम थे, मुख्तलिफ मैदानों में दीन की खिदमत करते थे, वाज़ो तज़की के जरिया, तालीफ़ो तसनीफ़ के जरिया, दरसो तदरीस के जरिया और भी मुख्तलिफ सिलसिले, और बाकायदा उनके 24 घंटे जो है वो अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे रहते थे। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। तका एक मर्तबा में एक किताब की तसनीफ कर रहा था और कलम को दवात के अंदर डुबोया, उस पहले जमाने में डुबो करके रोशनी पर लिखा था रोशनी लेने के लिए, डुबोने के बाद फिर कागज पर रख करके लिखना चाहता था। इतने में एक मक्खी आई नींब पर बैठी और वो उस रोशनाई से अपनी प्यास बुझाने लगी। मेरे दिल में आया कि जानवर प्यास बुझा रहा है, तो मैंने वो लिखने का अमल शुरू नहीं किया, रुक गया। यहाँ तक कि उस मक्खी ने अपनी प्यास बुझा कर वो जब उड़ गई तब मैंने लिखना शुरू किया। अल्लाह ताला ने इसी पर मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। ये देखो यहाँ पर भी खालिस वही अमल की बड़ाई नहीं देखी जाती, असल तो क्या देखा जाता है, खुलूस नीयत दिल की। हजरत सैयद गौस अली पानीपति रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं सिलसिले नक्शबंदिया के, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे, उनसे पढ़ा था, उनकी हयात है तज़किरे गौसिया, उसमें उनके मलफूजात ने एक वाकया लिखा है कि एक मरतबा हम लोग हजरत शाह साहब के दरस में बैठे हुए थे। एक आदमी अमीराना लिबास पहने हुए हजरत शाह साहब की खिदमत में आया और उसने अर्ज किया कि मेरा हाल जरा काबिल तवज्जो है, मैं इस वक्त बहुत बेचैन हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ, आप जो मशवरा देंगे और जो इरशाद फरमाएंगे उसके मुताबिक मैं अमल करूँगा। शाह साहब ने फरमाया कहो क्या है। कब मैं लखनऊ का रहने वाला सिपाही मनश आदमी, मेरे पास जो सरमाया था पैसे वो ख़त्म हो रहे थे और अब आगे गुजर बसर के लिए कुछ था नहीं। मैंने सोचा किसी बादशाह की नौकरी कर लूँ, नौजवान था और ताकत थी, फ़ुनून सिपाहगरी जो हैं उससे मुझे वाकिफियत थी। तो कहा मुझे पता चला कि उदयपुर के राजा को ज़रूरत है सिपाहियों की, तो मैं अपना घोड़ा और हथियार लेकर वहाँ लखनऊ से उदयपुर जाने के लिए निकला। रास्ते में रेवाड़ी एक आबादी है वहाँ ठहरा, वहाँ सराय थी, तकिया था, सराय में मुसाविर तकियों में फकरा रहते हैं, कि सराय में ठहरा, मैं जो है अपना घोड़ा वहाँ बांधा और चारपाई, वहाँ उस सराय में चंद भटियारियाँ थी जो मुसाफिर के ऑर्डर पर खाना पका करके उनको दिया करती थी, एक दो कस्बियाँ भी थी, रंडियाँ भी थी, मुसाफिर ऐसे ऐसी चीज़ें हुआ करती। तो कहा कि मैं अपना घोड़ा बांध कर वो सराय की चारपाई पर आकर बैठा, इतने में कस्बी आई, कहा नौजवान क्या बैठे हो, जरा कुछ खाना वाना पकवाओ, कुछ लुत्फ उड़ाओ। तो कहा मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने उसको कहा कि मैं जरा थका हुआ हूँ, सस्ता लूँ फिर देखता हूँ। कहा थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा वो आई, फिर कहा मैंने उसको टला दिया, फिर आई, तो जब फिर आई तो फिर मैंने कहा, मैंने अपना हाल बयान किया कि बात दरअसल ये है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है खर्च के लिए, ये घोड़ा और हथियार हैं, अगर इनको बेचता हूँ तो मैं नौकरी कैसे करूँगा, और फिर ये भी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करूँ। जब उसने ये हाल बताया तो कहा उस कस्बी गई, वो गई और जाकर के उसने 10 रुपये इसको दिए और यूं कहा कि ये 10 रुपये मैंने चरखा काट करके अपने कफन के लिए जमा किए थे, मैं तुझे कर्ज के तौर पर देता हूं, देती हूं, अल्लाह ताला तुम्हें जो गुसाद दे तो मुझे अदा कर देना। कहा वो 10 रुपये जब मिले तो मैंने उससे वहीं खाना वाना पकवाया, खाया और फिर आगे बढ़ा उदयपुर जाने के लिए, उसी से खर्चा किया। वहां राजा के यहाँ नौकरी मिल गई, अल्लाह ने जो है वो किस्मत ऊंची बनाई थी, तो तरक्की करते करते बहुत बड़ा ओहदा मिला, कई सिपाहियों कई हजार सिपाहियों का मैं अफसर बनाया गया, हाथी घोड़े सब कुछ। तो 3-4 या 5 साल के बाद कहते हैं घर से बीवी का खत आया कि बेटे का रिश्ता जहां जोड़ा है, लड़की वाले कहते हैं हमारी लड़की बड़ी हो गई अब शादी कराओ, इसलिए तुम आओ ताकि हमारे बेटे की शादी करें। तो कब मैं वहां से निकला घर जाने के लिए, पास में हुंडी थी उस जमाने में, ये गए ट्रैवल्स चेक की तो समझिए उस जमाने का, तो हुंडी थी, यहां से लिखवा लेते हैं बड़े व्यापारियों के पास, उसको पैसा दे देते हैं, वहां उसका पहचान वाला व्यापारी जहां जा रहे हैं उसको देंगे तो उतनी रकम देता है, जैसे हवाले वाले करते हैं। खैर हुंडी भी थी। कहा वापसी में मैं इसी वो रेवाड़ी वाली उसी सराय में जब पहुंचा तो मुझे बताया गया कि वो कस्बी जो है वो 1 महीने से बीमार है। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरे सामने ही उसने दम तोड़ा। कहा मैंने उसके कफन का दफन वगैरह का इंतजाम किया और फिर मैं ही जो है कब्रस्तान में वो है उसको कब्र में मैंने ही उतारा। उसको दफन करने के बाद कहा मैं फिर वहां मुसाफिर सराय खाने में आकर के रात को रुका, आधी रात को मैंने जेब में हाथ डाला तो वो हुंडी जो 5-5 हजार की मेरे पास थी वो गायब। तो मेरा तो चैन और सुकून छिन गया कि सारी दौलत मेरी पूरी अब तक की कमाई और जो मैं जिस लिए जा रहा था घर, ख्याल आया कि शायद वो जो उसको दफन करने के लिए उतरा था वहां कब्र में वहीं गिर गई होगी। कल रात को किसी को भी कहे बगैर आधी रात को वहीं कब्रस्तान जा करके उसकी कब्र खोदी। कब्र खोदी तो वहां कोई मुर्दा ही नहीं है, खाली है कब्र। वहां एक दरवाजा नजर आया, क्या मैं उस दरवाजे में दाखिल हुआ तो सामने एक बेहतरीन जो है शानदार सरसब्ज शादाब बाग था और उसके अंदर एक आलीशान महल। जब मैं महल के करीब गया तो वहां एक औरत जो है तख्त पर बैठी हुई है हसीनो जमील फाखराना लिबास के अंदर और उसके सामने खुद्दाम खड़े हैं। कब मैं डर गया कहीं किसी शाहजादी के महल में तो नहीं आ गया, मुझे कहीं गिरफ्तार न कर लें। मैं पीछे हटना चाहता था इतने में उस औरत ने मुझे देखा तो एक खुद्दाम में से नौकर को भेजा, उसने आकर मुझे कहा कि वो आपको बुला रहे। कब मैं जब उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे यूं कहा कि मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं कस्बी जिसने आपको 10 रुपये दिए थे और वो जो 10 रुपये मैंने तुमको दिए थे ना कर उस पर अल्लाह ने मुझे ये दिया और यूं कह लो ये तुम्हारी हुंडी वहां गिर गई थी। तब वो हुंडी उसने मुझे दी। कब मैंने कहा कि मैं जरा देख लूं, कहा ये तो कयामत तक भी पूरा नहीं होगा, जल्दी से वापस जाओ, यहाँ की तो एक घड़ी जो है वहां के हिसाब से बहुत लंबा वक्त रखती है। तो ये कहता है कि मैं वापस जब लौटा तो बाहर आया तो वहां तो हाल ही बदला हुआ था, न वो सराय थी न वो तकिया था न कुछ था, वो एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ। तो मैं लोगों से पूछ रहा था, लोग कहते थे कि क्या तुम्हारा दिमाग गया है, हम इतने सारा यहाँ तो कोई सराय है ही। का मेरा हाल सुनकर लोग, तो एक आदमी ने मुझे कहा कि ठीक है मैं तुमको एक मोम्मर एक बहुत बड़ी उम्र का एक आदमी था उसके पास मुझे ले गया और उससे मैंने कहा कि भाई यहाँ कोई सराय, तो उसने कहा कि मैंने अपने बचपन में, उसने अपने दिमाग को जोर दिया कि मैंने अपने बचपन में अपने परदादा से सुना था कि यहाँ एक सराय थी, एक जो है बड़ा अमीर आना ठाठ में आदमी आया था और रात को एक कस्बी का इंतकाल हो गया था, उसको उसने दफन भी किया था, फिर आधी रात को वो भी गायब हो गया और उसके साथी लोग उसके ना आने पर रो धोकर सब फिर चले गए। इसने कहा मैं वही हूं। कहा कि वो तो 300 साल की बात है, 300 साल का किस्सा। अब ये आदमी जो है वहां से अब लोग जमा हो गए। कहा मैं हजरत साहब हजरत साहब ने रदी साहब रहमतुल्लाह अलैह से वो कहता है ظاہر ہے میرا تو گھر بھی وہاں رہا نہیں ہوگا, اب میں کیا کروں, میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت شاہ صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ تم حرمین چلے جاؤ اور وہیں اللہ کی عبادت میں. شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں کی ایک گھڑی یہاں کی ایک صدی کے برابر ہے, تین گھڑی کا وقت وہاں گزرا تھا, تو یہ تین صدیاں گویا گزر گئی. شاہ صاحب نے اس کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیا. اور وہ تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہ جو قرض دیا تھا کائی کے لیے دیا تھا, کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑا قبول ہوتا ہے. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے باب قائم کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی محمود بن ربیع وزعم محمود انه اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقل مجہ من دلو کانت من دارہ. یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. یہ حضرت محمود ابن ربیع کا یہاں امام زہری تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے ان کے گھر کے کنویں کے ڈول سے بھر کر ڈالی تھی. یہ بچے تھے, 5 سال کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر صحابی ہیں, چھوٹے صحابی ہیں. حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تھے, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا وضو کے لیے. ان کے گھر ہی میں کنواں تھا, کنویں سے ڈول نکال کر وہ ڈول حضور کی خدمت میں وضو کے لیے پیش کیا گیا. حضور نے اس سے جو ہے وضو فرمایا اور منہ میں پانی لے کر ان کے اوپر پچکاری ماری. حضور نے وہ پانی پھینکا کلی کا, تو ان کو وہ یاد ہے کہ مجھے وہ میری عمر 5 سال کی تھی, مجھے وہ یاد ہے. یہ روایت نقل کرنے والے وہ صحابی حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ قال, وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سمیت اتبان ابن مالک الانصاری ثم احد بنی سالم, کہ میں نے حضرت اتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا, اور وہ جو ہے انصاری ہیں اور قبیلہ بنو سالم جو شاخ ہے انصار کی اس سے ان کا تعلق ہے. قال غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, تو وہ حضرت اطمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لن یوافی عبد. اب یہاں بھی امام بخاری نے اس روایت کو بہت شارٹ کر دیا, مختصر کر دیا. یہی روایت دوسری جگہ پر تفصیل سے موجود ہے. حضرت اطمان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں اور وہ اپنے قبیلے بنو سالم کے اندر لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے. ان کے گھر اور جہاں وہ اپنے قبیلے والوں کو نماز پڑھاتے تھے بیچ میں ایک نالا رہتا تھا. بارش کے زمانے میں جب کہ بارش ہوتی تھی تو وہ نالا بھر جاتا تھا, اور ان کی بینائی میں کچھ کمزوری تھی. تو ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں اپنے محلے والوں کو نماز پڑھاتا ہوں اور جہاں میری نماز کی جگہ ہے, مصلی ہے جہاں نماز ہوتی ہے, جماعت خانہ ہے, میرے اور گھر اور اس کے درمیان ایک نالا ہے, بارش کے زمانے میں وہ پانی سے بھر جاتا ہے اور میری بینائی بھی کمزور ہے, رات کو وہاں سے گزرنا میرے لیے مشکل, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ تجویز کروں. تو میری درخواست تو یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے اور 2 رکعت ادا فرمائیے تاکہ جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں اپنی نماز کے لیے تجویز کروں گا. یہ درخواست انہوں نے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. تو میں کہا ٹھیک ہے, ہم آئیں گے, وعدہ فرما لیا. دوسرے دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دن چڑھے ان کے گھر پر پہنچے, اور گھر میں جاتے ان سے کہا کہاں تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو. انہیں ایک جگہ پر اشارہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی, حضرت ابو بکر اور ان کے گھر کے لوگ پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے نفل کے طور پر. آپ نے نماز پڑھائی. یہ کہتے ہیں نماز سے فارغ ہوئے, کتنے میں محلے والوں کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, تو وہ لوگ بھی جمع ہو گئے. اس لیے کوئی بڑا آدمی جب آتا ہے کسی کے گھر تو محلے والوں کو بھی پتا چلتا ہے, تو وہ پہنچ جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ کہا حضور جب فارغ ہوئے تو ہم نے حضور کو کے لیے کچھ بنایا تھا, हम बना रहे थे, इसलिए हुजूर को रोक लिया कि आप ठहर जाएं, नौश फरमा करके जाएं। इतने में मोहल्ले वाले भी आ गए। अब मोहल्ले वाले जब आए तो लोग जब आते हैं तो बातें चलती है ना, तो गुफ्तगू चलती है। तो एक आदमी ने कहा कि ये मालिक इब्ने दुखैशीन कहाँ, एक सहाबी है उनका नाम मालिक था, मालिक इब्ने दुखैशीन, तो वो यानी गोया हमारे मोहल्ले में, वो भी उस मोहल्ले के रहने वाले थे इसी कबीले के, गोया हमारे मोहल्ले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सब लोग हुजूर की तशरीफ आवरी पर यहाँ पर आए, ये नजर नहीं आते, क्या बात है, गोया उनको भी आना चाहिए था। एक दूसरे आदमी ने, एक ने ये सवाल उठाया तो दूसरा क्या कहता है कि वो तो मुनाफिक है, नऊज़ बिल्लाह, कि भाई गोया इसलिए उनको हुजूर से क्या लेना जाना है, हुजूर आए हैं तो अभी उसको काय को आता हो ये। उस पर जब उसने ये कहा कि ये तो मुनाफिक है, तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा ये मुनाफिक है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता। तो हुजूर साहब ने फरमाया ऐसी बात मत कहो, क्या तुम उसको नहीं देखते कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और इस कलमे के जरिए से अल्लाह की खुशनुदी मतलूब है। दूसरा सबने गवाही, उस पर लोगों ने, उसने कहा कि असल आप तो उसका उठना बैठना मुनाफिकीन के साथ जरा दोस्ती, इसलिए हमने ये कहा। उसने कहा नहीं, खालिस दिल से उसने कलमा पढ़ा है उसी को, कि जब खालिस दिल से पढ़ा लन युवाफिया अब्दुन यौम अल-क़ियामत यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिही वजह अल्लाह इल्ला हर्रमल्लाह अलैहि नार, जो बंदा कयामत के रोज ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ आएगा और उस कहने से अल्लाह ताला ही की खुशनुदी चाहता है, यानी सच्चे दिल से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को हराम कर देते हैं। ये गोया इससे मालूम हुआ कि जो भी अमल खालिस अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाएगा उसके अल्लाह ताला के यहाँ उस पर बहुत बड़ा अजर मिलता है।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इल्लल्लाहु लहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے अल्लाह उससे नजात अता फरमा। अल्लाह इस निकाह में बेइंतहा खैर और बरकत मुकद्दर फरमा, ज़ौजैन में आपस में मवद्दत और रहमत पैदा फरमा, हर एक को एक दूसरे के हुकूक की अदायगी का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम नसीब फरमा कर आपस की हक तलफियों से इनकी पूरे पूरी हिफाजत फरमा, नेकी और भलाई के कामों में हर एक को एक दूसरे का मुईन और मददगार, और गुनाह और बुराई के कामों से एक दूसरे की हिफाजत का जरिया बना। ऐ अल्लाह इस रिवाजी जिंदगी की हकीकी खुशियों से इनको मालामाल फरमा कर खुशगवार और काबिल रश्क इस दिवाजी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इस निकाह को निगाहों और शर्मगाहों की इफ्फत और इस्मत और पाकीजगी और औलाद सालेह के वजूद में आने का जरिया बना। इन दोनों की रोजियों में भी अल्लाह बरकत और वसअत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह की निस्बत से जितनी खैर और भलाई मांगी इनको अता फरमा, और निकाह की निस्बत से जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही गई इससे इनकी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती जहां कहीं भी हो उसके ईमान और इस्लाम की, जानो माल की, इज्जत और आबरू की, अहलो आयाल की, तिजारत और ज़रात और कारोबार की, हर चीज की पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरे आलम में उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं मजलूमियत का शिकार है उसकी भरपूर नुसरत फरमा, जालिम के हाथ को जुल्म से रोक दे। अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ मौजूद तेरे तमाम बंदों की जायज और नेक मुरादें पूरी फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, आज तक तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, अब भी और आइंदा भी महरूम न फरमा। रब्बना जीना कताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सैयदना व मौलाना मोहम्मद व आलिही व असहाबी अजमईन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।